Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
और कहता है कि ये मेरी है, फिर उसके बाद उसको राग द्वेष होने लग जाता है, परमात्मा की सृष्टि उस पर संतुष्टि नहीं, उस पर घड़ा बनाया, तब उस घड़े को फिर वो मेरा घड़ा है बोलता है, तो फिर राग द्वेष हो गया। विश्व से सृष्टारम, वो परमात्मा विश्व का सृष्टा है, हम भी विश्व के सृष्टा हैं, लेकिन हम परमात्मा की सृष्टि और अपनी सृष्टि दोनों मिलाकर हम फंस जाते हैं। वास्तव में वेदांत कथा ये कहना है कि परमात्मा की सृष्टि में हम नहीं फंसते, यानी जीवात्मा नहीं फंसता। यदि जीवात्मा फंसता है तो वो अपने ही सृष्टि के द्वारा फंसता है। इसलिए तो मकड़ी का उदाहरण और रेशम के कीड़े का उदाहरण देते हैं। अपने ही शरीर से, अपने ही मुख से निकालकर जो जाला बनाता है मकड़ी, वो जाले में वो नहीं फंसता है, परंतु अपने ही मुख से, अपने ही शरीर से, अपने मुख से निकाला हुआ वो धागे को अपने शरीर में लपेटने के कारण वो रेशम का कीड़ा फंस जाता है। तो हमारी अवस्था रेशम के कीड़े की तरह है, सृष्टि को हम अपने से दूर नहीं रखते, अपनी सृष्टि को अपने से दूर नहीं रख पाते, इसलिए फंस जाते हैं। मकड़ी की कीड़ा जैसे अपने सृष्टि को अपने से दूर रखता है, घास, तृण, दीवार, लकड़ी में कहीं न कहीं उसको उलझाएगा, वो कहीं न कहीं उसको उलझाएगा, कहीं न कहीं उसको जोड़ेगा और जाल बनेगा, और जाल के बीच में आपने असंग होकर बैठ जाएगा। अरे सब का कीड़ा अपने ही शरीर में लपेटता है और जगह कहीं जोड़ता नहीं, इसलिए फंस जाता है। जीवात्मा की सृष्टि वो अपने दायरे में सीमित है, परमात्मा की सृष्टि अपने दायरे में सीमित नहीं है, वो व्यापक है। तो इसलिए परमात्मा आनंद में है, इसलिए परमात्मा को कोई झंझट नहीं है। विश्वस्य सृष्टारम्, सारे विश्व की सृष्टा रचयिता वही है। तो ये सृष्टि देखकर मोह करके भोग में आसक्त होने के लिए ये सृष्टि नहीं है। वास्तव में परमात्मा ने यह सृष्टि तो इसलिए बनाया था कि इस व्यक्त सृष्टि को देखकर इसके सृष्टा जो अव्यक्त है, अदृष्ट है, उसका अनुसंधान कर ले वे, इसके लिए परमात्मा ने यह सृष्टि बनाया था। परंतु हम ऐसे मूर्ख निकले कि जिस प्रयोजन से परमात्मा ने यह सृष्टि बना दिया था, उस प्रयोजन को हमें ख्याल नहीं रहकर उस सृष्टि को ही देखकर इतनी सुंदर सृष्टि करके हम आसक्त कर लिए और यहीं फंस गए, सृष्टा को नहीं खोजा। कभी कभी विशेष करके हमारा आश्रम है नेपाल में, देवघाट तीर्थ स्थल है, बड़ा तीर्थ स्थल है। आए दिन वहां कोई न कोई व्यक्ति को खोजने वाले उसके अभिभावक लोग आते हैं। कोई लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, पत्नी आती है, पति आता है अपने बच्चों को लेकर, बच्चे आते हैं अपने बाप को लेकर खोजते हुए, और हाथ में एक फोटो लेकर आते हैं कि महाराज ये औरत को आपने यहां कहीं देखा है। फोटो लेकर आते हैं, पूछते इसको कहीं देखा है, तो हम कहते हैं क्यों भाई, बोले 4 दिन हुआ है घर से झगड़ा करके निकल गई है, हम सब जगह खोज डाले कहीं नहीं मिल रही है। थोड़ा कभी कभी सत्संग जाया करती थी, कभी कभी वो भजन पूजन भी करती थी, जरा वो आध्यात्मिक वृत्ति की थी, इसलिए कहीं यहां इस आपके आश्रमों में तीर्थ स्थल में कहीं यहां तो नहीं आई करके हम यहां खोजने आए हैं, इसको कहीं देखा है। हमने कहा उसको तो तुमने दिखाया तभी देखा है, कोई फोटो को पूछेगा तो फोटो जब दिखाएगा तब ना दिखेगा ना। तो हमने एक बार यही कहा कि ये फोटो तो अब भी देखा है, वो कहता है नहीं नहीं फोटो तो अभी देखा है, ये चेहरा जिसका है उसको देखा है, हमारा पूछने का आशय ये है। तो हमने कहा इस जिसका ये चेहरा है उसको तो हमने नहीं देखा है, इसके चेहरे से मिलता जुलता चेहरा दूसरे को नहीं देखा है। तब ये फोटो आप यहां रख लीजिए, कभी किसी प्रसंग में ये चेहरा वाला कोई यहां आ जावे तो हमको ये नंबर में फोन कर दीजिएगा। अरे मूर्ख, तुम अपने खोई हुई मां को परोक्ष हो गई, जो मां खो गई, जो मां उसको जो प्रत्यक्ष से दिखता हुआ जो फोटो है उसके माध्यम से तू अपने मां को खोज रहा है, इतना तो उसको ख्याल आ गया। कोई अपने बाप को खोजने आता है, अपने पत्नी पति को खोजने आती है, अपने बाप को अपनी मां को झगड़ा करके निकल गए, आज एक हफ्ता हो गया कोई सूचना नहीं, कहिए जी पता चले तो बताइए, और उसके लिए उसका फोटो लेकर घूमता है। ये सारे जगत उसको खोजने के लिए फोटो बनाया था उसने, ताकि मुझे खोजना पड़े तो इस पर खोज लेवे, लेकिन हम तो उसी में ही उसी को ही है? फोटो कोई मां मानकर वहीं बैठ गए, मां को खोजने की कोशिश ही नहीं की। तो कोई कोई तो खोजने आते हैं मां बाप को, तो बहुत से मिल जाते हैं आश्रम में आते हैं, हम आश्रम में बैठने 3 दिन तो बैठने खाने के लिए निःशुल्क देते ही हैं, कोई भी तीर्थयात्री जावे आश्रम में 3 दिन तक तो हम पूछते ही नहीं, तीर्थयात्री होगा आया होगा बैठे और खाए रहे, तीर्थ गए गंगा स्नान कर ले बे, तो 3 दिन के बाद तब हम पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, कब तक रहोगे, क्योंकि तीर्थयात्री हो तो तीर्थयात्रा तो 3 दिन की है, हो गई चले जाओ अब, और यदि कोई और प्रयोजन है तो बोलो और क्या प्रयोजन है। जब हम पूछते हैं तब फिर वो अपनी सारी कहानी सुनाने लगता है, महाराज अब तो मैं देवघाट ही रहने की इच्छे से आ गया हूं, आप अपने आश्रम में मुझे आश्रय दीजिए, अब हम घर नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे, तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या? बोले है, वो दुष्ट है, कल तक तू अच्छी थी अब दुष्ट हो गई, दुष्ट तो पहले ही से ही थी, वो अब जाकर दुष्ट हुई है। बेटे नहीं है तुम्हारे? बोले हैं बेटे भी, वो बड़ा मूर्ख है, बड़ा दुष्ट निकले, उसको पैदा किया तुमने, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, शादी कर दिए, सब कुछ कर दिया, अब जाकर वो दुष्ट क्यों हुए है? पहले दुष्ट नहीं हुए, अब दुष्ट क्यों हुए? कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। बोले इसलिए दुष्ट हो गए कि वो अभी ही अपना सारी संपत्ति कहते हैं कि तुम हमको बांट दो। अब हमने मेहनत करके कमाया वो संपत्ति, उनको पढ़ाया लिखाया योग्य बना दिया, वो नौकरी करे कमाए, हमारी संपत्ति पर वो क्यों आंख डालते हैं भाई, हम क्यों दें? अभी तो हम ही जिंदे हैं। जब हम उसको देने को राजी नहीं हुए तो वो झगड़ा करके लग गए, रात दिन झगड़ा। तब ये नालायक है, इसलिए हमने विचार किया कि अब उनके पास नहीं रहेंगे, हम आपके पास रहेंगे। मान लो कि संपत्ति न देने से तुम्हारे बच्चे तुमसे झगड़ा करके घर से निकाल दिया, इसी तरह संपत्ति न देने से मैं भी आश्रम से निकाल दूं तो तू क्या करेगा? बोल, है ना, ये संभव है कि नहीं? बोलो, तुम्हारे ही बच्चे संपत्ति नहीं दिया करके तुमको घर से निकालते हैं तो हमारा तो तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है, ना हम तुम्हारे बाप हैं, ना तुम्हारे हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुम संपत्ति लेकर आओ तो हम आश्रम में रहने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कहेंगे तो तू क्या करेगा? बोले बोले आप तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप तो महात्मा हो। लेव जी, उसको इतना विश्वास है, आप तो महात्मा हो, ये तो आश्रम है, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर क्या करेगा? बोले संन्यास लूंगा, यहीं चुटिया कटा लूंगा, यहीं संन्यास लूंगा, यहीं भजन करूंगा, जो सेवा संभव हो वो कर लूंगा सेवा भी। अच्छी बात है, चल तो हम कुछ न कुछ सेवा बता देते हैं, ये फूल में ये बगीचा है इसका देखभाल कर, बैठ जा खाओ और मस्ती करो भजन करो, फुर्सत में ये सब बगीचा का देखना, या गौशाला है इसको देखना, या ये कोठार है यूं है त्यों है, कोई ना कोई ड्यूटी कोई ना कोई जिम्मेवारी तुम ले हो रहो। बोले हां महाराज, तो जो ड्यूटी लेता है और रहता है खाता है, तो कभी कभी तो फिर एक हफ्ते बाद 15 दिन के बाद फिर उसके अभिभावक आते हैं, उसकी पत्नी आती है, उसके बच्चे आते हैं, पिताजी हम झगड़ा नहीं करेंगे, उसकी पत्नी कहती है कि नहीं तुम अब चलो अब झगड़ा नहीं करूंगी, क्या 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 करते हैं, एक दो दिन एक दो घंटे बैठकर आप वार्ता करते हैं, फिर वो कहता है महाराज अब तो जाना पड़ेगा लेने आ गए हैं, वो कहता है महाराज लेने आ गए, मानते नहीं है, हमने कहा यहीं बैठेंगे यहां मुझे कोई तकलीफ नहीं, महाराज खाने भी देते हैं और भाई रहने के लिए कमरा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा कर देते हैं, यहां बड़ा आनंद है, अब हम नहीं जाएंगे कहते हैं, कितना कहा ये मानते नहीं है कि चलो चलो कर रहे हैं, जाना पड़ेगा महाराज आज्ञा दो। हमने कहा खुशी से जाओ, अब दोबारे फिर झगड़ा हो गया करके नहीं आना, झगड़ा हो गया करके नहीं आना फिर दोबारे। फिर कोई कोई तो उसमें से 2-4 महीने के बाद फिर आते हैं, फिर क्या हो गया, फिर झगड़ा हो गया, फिर आओ तो अच्छा रहो, फिर वो निकलते हैं क्योंकि वो संपत्ति का बंटवारा किए बिना निकलता है, फिर बच्चे आते हैं कि बंटवारा तो किया ही नहीं, चल बंटवारा कर फिर जहां जाना होगा जा, लियो जी या तो मर दे या तो आत्महत्या कर ले तो हम संपत्ति बंटवारा करने में आसान होगी, वो मरता भी नहीं बंटवारा भी नहीं करता है, तब आकर हमसे कहते हैं पिता स्वामी जी इनको समझाओ आप कि जो बंटवारा देना है जिसको देना है सब दे दा के फिर जहां जाना हो जाएं, ताकि हम स्वतंत्र हों, अपने हिस्से के संपत्ति को हम स्वतंत्र होकर भोगेंगे। ऐसी ऐसी समस्याएं आश्रम में आ जाती है। सृष्टि किस लिए बनाया गया है, हमने ये उदाहरण क्यों दिया था कि फोटो ले लेकर आते हैं बाप को खोजने मां को खोजने, अरे तुम भी इस जगत को देखकर उसके सृष्टा परमात्मा को क्यों नहीं खोजते हो बाबा, ये तो उसको खोजने के लिए बनाया फोटो है, और तुम इसी को ही परमात्मा मानकर सब कुछ मानकर बैठ गए, फोटो को ही मां बाप मान गए, तो फिर तुम्हारी भ्रांति है। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारं अनेक रूपम्, वो खुद अनेक रूप है और अनेक सृष्टि भी करता है। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, अनेक रूप है इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो भी अनेक टुकड़ों में बट गया हो, ऐसा नहीं है, वो एक रहता हुआ अनेक है, जैसे आकाश एक रहता हुआ अनेक घटों में अलग अलग प्रतीत होता है, अनेक घड़ में प्रतीत होने पर भी वह एक है, अनेक एक रहता हुआ अनेक मठों में प्रतीत हो रहा है, अनेक मठों में प्रतीत होने पर भी वह एक है, इसी तरह वह परमात्मा मूल रूप में खुद तो एक है, एक होता हुआ भी अनेक उपाधियों से युक्त होकर वो अनेक प्रतीत होता है, और अनेक प्रतीत होने पर भी वह मूल रूप में एक ही है, उसकी अनेकता किसी हालत में भी सिद्ध नहीं हो सकती। विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं, अनेक विश्व को अनेक नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच को वो अकेले ही घेर कर रहता है, जैसे यहां इस कमरे में इस हॉल में इस मठ के अंदर इस हॉल के अंदर स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं वृद्ध भी हैं बालिका बालक भी हैं कुर्सी भी हैं टेबल भी हैं लाइट भी हैं हर चीज है, और उन सभी को मठाकाश अपने गर्भ में सबको घेर कर रहता है। सभी को घेरा है कि नहीं मठाकाश ने, इस मठ के अंदर जो कुछ भी है जो कुछ आपको दिख रहा है कुर्सी टेबल पलंग मनुष्य पशु पक्षी जो कुछ आप इस कमरे में माला देखो फोटो देखो जो देख रहे हो ये सारे वस्तुओं को ये मठाकाश घेर कर बैठा हुआ है ना, इसी तरह महाआकाश ये सबको घेर कर बैठा हुआ है, चाहे तुम्हारे प्रेमपुरी आश्रम को हो चाहे बाबुलनाथ मंदिर हो चाहे ओबराय होटल हो चाहे ताज होटल हो है चाहे देवनार का बुचरखाना हो चाहे बांद्रे की खाड़ी की झोपड़पट्टियां हो चाहे दुर्गंध से युक्त हुआ बांद्रा की खाड़ी हो, चाहे गवर्नर का बिल्डिंग हो, परिवेष्टिरारम, ये महाआकाश सब उसको घेर कर बैठा हुआ है, सभी को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है, सभी को अपने अंदर घेरा हुआ है। जैसे ये महाकाश का उदाहरण, इसी तरह सारे विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा अकेले ही घेर कर बैठा हुआ है, परिवेष्टितारम। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, उस देव को, प्रकाश स्वरूप देव को, देवतनाद देवः, उस प्रकाश स्वरूप देव को, उस व्यापक देव को, उस परमात्मा को अपने ही हृदय में, इस रूप में विद्यमान है वह मेरा परमात्मा, मेरा लक्ष्य, इस रूप में ज्ञात्वा, जानकर, यदि कोई जीवात्मा इस रूप में जानता है, मुच्यते सर्वपाश ही, वह जानने वाला व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं वास्तव में बंधा हुआ नहीं था, भ्रांति से मैं बंधा हुआ जैसा प्रतीत हो रहा था, भ्रांति थी, यह समझ जाएगा तो बंधन की मुक्ति है। तो पहले जो मंत्रों में जीव का स्वरूप बता दिया, अंगुष्ठ मात्र से लेकर अनेक शरीर को प्राप्त करता है, अपने कर्मों के चलते अनेक शरीर को प्राप्त करता है, बार बार जन्मता है और बार बार मरता है, ये बताया था। उस जन्म मृत्यु से इसको छुटकारा कब मिलेगा, तो बोले ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे ही, उस परमात्मा को जानेगा तो इन सब जन्म मृत्यु से वह मुक्त हो जाएगा, सभी कर्म बंधनों से वह मुक्त हो जाएगा, जाति के बंधन से मुक्त हो जाएगा, लिंग के बंधन से मुक्त हो जाएगा, आश्रम के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, सबसे वह मुक्त हो जाएगा। तो वेदांत ज्ञान से मुक्ति मानता है, उपनिषद ज्ञान से मुक्ति मानता है, अज्ञान से बंधन मानता है तो ज्ञान से मुक्ति मानता है, कर्म से मुक्ति नहीं मानता, उपासना से मुक्ति नहीं मानता है, भक्ति से मुक्ति नहीं मानता, योग से मुक्ति नहीं मानता है, क्योंकि ये सब के सब अज्ञान के अंतःपाती हैं। बंधन भोग से हुई होती तो योग से मुक्ति होती, बात समझ गए ना, बंधन यदि भोग से हुई होती तो योग से मुक्ति होती, बंधन भोग से नहीं हुआ है, बंधन तो अज्ञान से हुए, अज्ञान से हुआ हुआ जो बंधन है उससे मुक्ति होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए तो राम गीता में भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, हे लक्ष्मण, अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम तदानमेवात्र विदो विधीयते, सारे के सारे बंधन अज्ञान से सिद्ध हुए हैं और उस अज्ञान को नाश करना ही उपनिषद का एकमात्र लक्ष्य है। तदहानम एवत्र विधो विधीयते, विद्यैव तन्नास विधो पटीयसी, ये भी समझ लो लक्ष्मण, उस अज्ञान को नाश करने की क्षमता तो विद्या में ही है, न कर्म, कर्म में उस अविद्या को नाश करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है महाराज कर्म में अविद्या को नाश करने की क्षमता? बोले क्योंकि कर्म उस अज्ञान से ही पैदा हुई हुई है, अज्ञान से ही पैदा हुआ हुआ कर्म अपने ही पैदाइश करने वाले उपादान को नाश नहीं करता, जैसे मिट्टी से पैदा हुआ हुआ घड़ अपने उपादान मिट्टी का नाश करके वह खुद रह ही नहीं सकता, इसीलिए कर्म अपने कारण रूप अविद्या को नाश करने नहीं जाएगा, विरोध हो तब ना नाश करेगा, विरोध नहीं है, घड़े का और मिट्टी का विरोध नहीं है, जैसे घड़े और मिट्टी का विरोध नहीं, जैसे धागा और कपड़े का विरोध नहीं है, जैसे गहने और सुवर्ण का विरोध नहीं है, जैसे लकड़ी और कुर्सी की विरोध नहीं है, तो कुर्सी लकड़ी को नाश करने के लिए कैसे जाएगा, जहां विरोध है वहीं ना नाश करने की संभावना है, विद्या और अविद्या का ही विरोध होने के कारण, विद्या ही अविद्या को नाश करने में समर्थ होने के कारण, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, वह परमात्मा को कैसे ग्रहण करना है, भावग्राह्यम अनिड्याख्यम, वो परमात्मा भावना से ग्रहण किया जा सकता है। भावना माने श्रद्धा और विश्वास। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखहिं तिन तेसे। तुलसीदास जी वृंदावन गए तो राम का दर्शन नहीं हुआ। किसको? तुलसीदास जी को। वृंदावन गए तो राम का दर्शन नहीं हुआ। सभी को बांके बिहारी का दर्शन हुआ है, तुलसीदास जी को नहीं हुआ। क्योंकि उनके भावना में बांके बिहारी थे ही नहीं, तो कहां से बांके बिहारी का दर्शन होगा? उनके मन में तो, उनके भावना में तो राम थे। तो सब लोग जाने के बाद भगवान का दर्शन हो गया? पूछ रहे हैं तुलसीदास जी। बोले भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं। बोले कैसे व्यक्ति हो, वो देखो सामने बांके बिहारी, साफ दर्शन हो रहा है। बोले हो रहा हूं तुमको, हमको नहीं हो रहा है। तब सब चले गए। तब तुलसीदास जी ने भगवान से कहा कि क्या बात है, तुम कहां खो गए हो, ये क्या रूप बनाकर बैठा है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, क्या रूप बना के बैठे टेढ़े मेढ़े, काला कलूटा। बांके बिहारी तो काले हैं ना, और बांके बिहारी टेढ़े मेढ़े हैं, ये काला कलूटा टेढ़ा मेढ़ा, ये रूप क्या बना के बैठा है, क्या हो गया तुमको? मेरे मन में जो रूप है वो कहां गया है? मेरे मन में जो रूप है कहां गया? इसलिए मैं हाथ नहीं जोड़ने वाला हूं जब तक वही रूप नहीं लोगे। तो कहते हैं बांके बिहारी ने तुलसी साहब जाने के बाद तुलसीदास जी के सामने फेंक दी बांसुरी, अपने पांव को ठीक सीधा कर लिया, बस सीधा धनुष बाण धारण करके जटाजूट हो गए। तुलसीदास जी को बड़ा आनंद आया, दर्शन किया, तुलसीदास जी चले गए। तुलसीदास जी को वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में भी राम का ही दर्शन होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखहिं तिन तेसी, ये बात यहां श्रुति ये कह रही है। भावग्राह्यम, वो परमात्मा अपनी भावना से ग्रहण करने योग्य है। अनिडम अनिडाख्यम, और तुम यदि दृष्टि से देखना चाहोगे तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसका शरीर नहीं है। अनिडम, नीड शब्द का अर्थ होता है घर, घोंसला। उसके घोंसला तो तुम्हारा ही हृदय है, तुम्हारे हृदय के अलावा उसका और दूसरा कोई घोंसला नहीं है कि तुम उसको बाहर कहीं उसके घोंसले में देख लो, पक्षी के घोंसले की तरह उसके कहीं और घोंसला स्वतंत्र देख लो, नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया है, अपने लिए तो हृदय भी नहीं बनाया, अपने लिए तो शरीर भी नहीं बनाया। दूसरे के हृदय से उसका गुजारा हो जाता है, दूसरे के शरीर से गुजारा होता है, दूसरे के आंख से उसका गुजारा हो जाता है, दूसरे के जिह्वा से उसका गुजारा होता है। परमात्मा असली सन्यासी है, गृहस्थी नहीं है वो, जो सभी वस्तु अपने पर इंडिपेंडेंट रहे है। सन्यासी जैसे दूसरे की रोटी पर अपना पेट पालता है, दूसरे के दिए हुए टुकड़े पर अपने बदन ढकता है, बात समझ गए ना? दूसरे के बनाए हुए आसियान में दो चार दिन महीना, एक महीना गुजारनी थी एक महीना गुजारता है दूसरे के बनाए हुए। ले जी, परमात्मा सब दूसरे के लिए बनाता है और दूसरे के वस्तुओं में अपना गुजारा कर लेता है। भावग्राह्य अनिड्या क्यम, उसका कोई नीड नहीं है, उसके कोई घोंसला नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, बेचारा अनिकेत है। और इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है अनिकेत, मैं अनिकेत हूं, इसलिए मुझे पाना हो तो तुमको भी अनिकेत बनना ही पड़ेगा। गीता का शब्द है अनिकेत, निकेत माने घर, घर नहीं है, घर छोड़ना ही पड़ेगा। अनिडाख्यम भावा भाव करम शिवम, व्यक्त और अव्यक्त करने वाला वही एक परमात्मा है, वह शिव रूप है, सबका कल्याण करने वाला है। परमात्मा कभी भी किसी का अहित करने वाला नहीं है। यदि किसी को इस विश्व सृष्टि में अहित होता है तो उसके अपने ही चलते उसका अहित होता है, परमात्मा के चलते किसी का अहित नहीं होता है। कला सर्व कर्म देवम, जो कलाएं हैं 16 कला प्रश्नोपनिषद में बताया था, प्राण से लेकर नाम पर्यंत 16 कला, छठे प्रश्न में 16 कलाओं की चर्चा है, जीवात्मा के 16 कला। तो सब कलाओं को रचना करने वाला वही है। कला सर्ग कर्म देवम ये विदुस्ते जहुस तनु, जो ऐसे परमात्मा को अंतरात्मा में ही अपने रूप में जानता है वह व्यक्ति फिर दोबारे शरीर ग्रहण नहीं करता। जहुस तनुम, वो अपने शरीर धारण करने की सारी प्रक्रियाओं को संभावनाओं को वह परित्याग कर देता है। आज तो बहुत देर हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।